कुञ्जविहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय नभ गिरिवर धारी शोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन नंदन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय कुंज विहार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिप्रकाचार्य अष्टोदर्श श्री श्रीमदीस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत स्कंद पांचवा अध्याय पहला और श्लोक छत्तीसवा अध्याय का नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। श्लोक मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। स एवं परिमित बलम पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानु पतित गुण विसर्गः संसर्गेणानुवृतमिवात्मानं मन्यमानं आत्मनिर्वेद इदमाह स एवं परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणाशु चरणानुशयनानु पतित गुण विसर्ग संसर्गेण निवृत्त मिवात्मान मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह स एव परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानु पतित गुण विसर्ग संसर्गेण निवृत्तमिवात्मानं मन्यमानं आत्मनिर्वेद इदमः स एव परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानु पतित गुण विसर्ग संसर्गेणानिवृत्तमिवात्मानं मन्यमानं आत्मनिर्वेद इदमः स एव परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निवृत्तमिवात्मान मन्यमान आत्मनिर्वेद इद महा स एव परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निवृत्तमिवात्ममान मन्यमान आत्मनिर्वेद इद महा। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्द शब्द का अर्थ जानेंगे। सह वे महाराज प्रियव्रत एवं इस प्रकार अपरिमित अद्वितीय बल शक्ति पराक्रम जिनका प्रभाव एकदा एक बार तू तब देवर्षि महामुनि श्री नारद मुनि के चरणानुशयन चरण कमलों में समर्पण अणु तत्पश्चात पतित गिरा हुआ गुण विसर्ग विषयों से प्रकृति के तीन भौतिक गुणों से उत्पन्न संसर्गेण संपर्क होने से अनिवृत्तम असंतुष्ट इव सदृश आत्मानम अपने आप को मन्यमानः इस प्रकार सोचते हुए आत्म स्वयं निर्वेदः त्यागमय इदम यह आह कहा। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि उन्होंने महामुनि श्री नारद मुनि के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था और वास्तव में श्री कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थे, किंतु वे अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गए थे। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा और वे विरक्त होकर बोलने लगे। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वोथो पते तत्तो यदि यत्र कवाद भद्रम भूदमुष्य किम को वार्थ अप्तो भजताम स्वधर्मतः। जिसने ईश्वर की सेवा करने हेतु अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त भले ही अपने वृत्ति परक कर्तव्यों में पूर्ण रूप से संलग्न रहे तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी भी प्रकार से किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वह नीचे गिर जाता है तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। अतः यदि कोई नीचे गिरता भी है तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रिवर्त नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विषयों में पुनः लौट आए। कालांतर में उनमें अपने गुरु श्री नारद मुनि के अनुग्रह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की उनकी भावना पुनः जगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.41 में कहा गया है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। भक्ति योग से चित्त पुरुष को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सके। राजा प्रिव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ। इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। कालक्रम से जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज्य तथा पुत्रों के भोग की अभिलाषा नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रिव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के उपरांत उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देवर्षि चरणानुशयनम शब्दों से यह सूचित होता है कि महाराज प्रिव्रत पूर्णतया देवर्षि श्री नारद मुनि के शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहां तक कि अनुष्ठानों के दृढ़तापूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामास्तान अनुपतितः। गुरु को तत्क्षण दंडवत प्रणाम करने तथा उनके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रिव्रत से ये सभी कार्य में नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में है, वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रिव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस भौतिक जगत में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों के सृजन हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमारे द्वारा अपनाए गए भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार भौतिक प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। सभी का रविवारीय सत्संग कार्यक्रम के सुबह के भागवतम कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के पहले अध्याय से पढ़ रहे हैं। बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही उत्साहवर्धक महाराज प्रियव्रत का चरित्र है। उसमें आज के श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार प्रियव्रत महाराज कई सालों तक राज्य करने के पश्चात अभी उनके जीवन में उनको पुनः विरक्ति की भावना आने लगी है। उन्हें वे पुनः कृष्ण भावना की ओर और सीरियसली और गंभीरता से किस प्रकार जाने का सोच रहे हैं, किस प्रकार विचार कर रहे हैं। अपने गुरु का स्मरण करते हुए वे वापस से किस प्रकार कृष्ण भावना की तरफ ज़्यादा दृढ़ता से कैसे पद उठाए, इस प्रकार वे सोच रहे हैं। और यही ये श्लोक है। इस श्लोक में हमें कृष्ण भावना किस प्रकार तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर जुड़ा रहा, भले वो अपने निज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नियमित जवाबदारियाँ, उनको थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हुए भी एकाधी बार वो अगर वैराग्य लिया या कृष्ण भावना में ज़्यादा समय दिया या सेवा की, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और समय के अनुसार वो जो उसने जो सेवा की है वो उसका जमा रहती है, जमा पूंजी रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उसके विपरीत एकादे कर्मी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाई, बहुत अच्छी तरह सब सामाजिक कार्य या परिवार के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां है वे, या स्वयं के प्रति कुछ भी जिम्मेदारियां होगी, वो सब बहुत अच्छी तरह से निभाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, तो उसके जीवन में किया हुआ सभी कार्य श्रम एव ही केवलम, केवल गधे की मेहनत की प्रकार है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। तो इस श्लोक से हम देखते हैं कि कैसे कृष्ण भावना या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एक आशा की किरण है भक्तों के जीवन में, और जो भक्त अभी तक भक्त बने नहीं है उनके जीवन में भी कृष्ण भावना एक आशा की किरण। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस अ रे ऑफ होप। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के निजी जीवन में भले वो भक्त रहे या अभक्त, अभक्तों के रूप जीवन में ज्यादा प्रमाण में ये निराशा दिखाई देती है, परंतु कभी कभी भक्तों के जीवन में भी निराशा दिखाई पड़ती है। अभक्तों के जीवन में अभी किसी को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं है तो वो परेशान है, किसी का पढ़ाई पूरा हुआ है उसको जॉब नहीं मिल रहा है वो निराशा में है, किसी को जॉब भी मिला है पढ़ाई भी अच्छी हुई है परंतु अच्छी पत्नी या अच्छा पति नहीं मिल रहा है उसलिए वो परेशान है, अच्छा पति मिला अच्छी पत्नी मिली उसके पास बच्चों के लिए कुछ परेशान है, बच्चे हो रहे नहीं हो रहे, हुए तो बीमार हो रहे, अलग अलग कारण, उसके पश्चात बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है। मतलब जन्म से लेकर, हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि अभी मैं कभी बड़ा होऊंगा और स्कूल में जाऊंगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा, स्कूल में जाने के बाद लगा अरे बड़ा भैया ज्यादा खुश है, मैं जब भी 10वीं पास करूंगा तो और आनंद आएगा, अभी का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार पढ़ते गए पढ़ते गए तो हर स्टेज पे, जीवन के हर स्टेज पे एक प्रकार का स्ट्रेस, एक प्रकार का टेंशन सबके जीवन में रहता है, नॉन ड्यूटी के रूप में जीवन में भी और भक्तों के जीवन में भी। और उसके उपरांत क्योंकि इस स्ट्रेस में सब लोग जी रहे हैं तो अनेकों अनेकों बीमारियां भी हो रही है, कुछ लोग समय से पहले ही हार्ट अटैक जैसी बीमारी आके शरीर छोड़ रहे हैं, कुछ लोग साइकेट्रिस्ट के पास उनको जाना पड़ रहा है, एंटी डिप्रेसेंट माने निराशा से बाहर निकलने के लिए उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है, या साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग ऐसा सब लेना पड़ रहा है, और कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह निराशा में फंसे रहते हैं कि वे आत्महत्या जैसा एकदम लास्ट स्टेप या बहुत ही कठिन डिफिकल्ट या गलत कार्य कर बैठते हैं। तो अभक्तों के जीवन में इस प्रकार से हम निराशा देखते हैं, और कभी-कभी भक्त भी अभी कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, मानो कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, अभी भी कुछ कुछ स्थानों पर हम स्ट्रगल करते हैं, मानो कोई भक्त है उसको अभी भी जप करते हुए नींद आती है, उसको चलते चलते जप करना पड़ता है, किसी किसी को अनर्थों से बहुत तकलीफ होती है अभी भी उसका मन माने अनर्थों के पीछे भागता है, किसी किसी को वैष्णव सेवा में रुचि नहीं है, किसी किसी को हरिनाम में रुचि नहीं है, तो भक्तों के भी जीवन में ऐसा लगता है अरे हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं कुछ प्रगति हुआ है या नहीं है, हमारे जीवन में कुछ आशा है या नहीं, हम भगवत धाम पहुंचेंगे या नहीं। अभी कोई कोई भक्त अभी 60 साल 70 साल के हुए, उनको लगता है अभी तो समय पास में आ रहा है तो क्या होगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो भक्तों के जीवन में भी एक निराशा हो सकती है। तो हमको चाहिए कि इस श्लोक से, इस तात्पर्य से हमको एक होप मिलता है, एक आशा मिलती है कि विशेष रूप से जो भक्त है या जो भक्त नहीं भी है वो भक्त बन सकता है, उनके जीवन में ये कृष्ण भावना जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है यह एक आशा की किरण है। किस प्रकार ये है ये हम देखेंगे। तो श्रीमान गौरांग प्रभु जी, एक बार उनको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आप इस्कॉन संस्था में इतने सालों से कार्यरत है, आपसे मेरा केवल एक प्रश्न है, बताइए इस्कॉन का समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए इस्कॉन क्या करता है। तो प्रभु जी ने उनको उत्तर दिया कि हर चीज की एक पहचान होती है। उदाहरण में एक आप मेडिकल शॉप में या हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, दवा मिलेगा। कोई तबेले में जाते हो, गौशाला में जाते हो तो वहां क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप इस्कॉन संस्था में, इस्कॉन मंदिर में या इस्कॉन भक्तों से मिलते हो तो उनसे आपको क्या मिलेगी, होप, एक आशा मिलेगी। प्रभु जी कहते हैं वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग होप, हम आशा वितरित कर रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा थोड़ा थोड़ी समय पहले हमने चर्चा किया, कैसे लोग अनेकों अनेकों कारणों के वजह से निराशा निराशा में है। भक्त भी कभी कभी निराशा में है, अभक्त तो बहुत ही निराशा में है। उनको तो एवरी डे हर दिन एक स्ट्रगल है। हाँ, लोकल ट्रेन में सीट मिलने से लेके रात को घर पे वापस आने तक हर स्टेप पे स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो उसकी वजह से वे निराशा में हैं। तो प्रभु जी ने जिस प्रकार कहा कि इस्कॉन संस्था या हरे कृष्ण आंदोलन या भक्त जो है वे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग होप, वो आशा वितरित कर रहे हैं। किस प्रकार, वो आगे देखेंगे। एक मुहावरा है, वर्स्ट थिंग टू लूज इन लाइफ इज टू लूज होप। अगर जीवन में हमको कुछ नहीं खोना चाहिए, कभी भी नहीं खोना चाहिए, तो क्या नहीं खोना चाहिए, आशा। हम देखते हैं पूरा वर्ल्ड, दुनिया आशा के ऊपर चल रही है। अभी मानो किसी व्यक्ति को आगे कुछ जीवन में आशा ही नहीं है तो वो कार्य भी नहीं करेगा। अभी जो गृहस्थ है कभी कभी काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको आशा है इससे कुछ धन अर्जन होगा, इससे परिवार का पालन पोषण होगा, कोई भक्त रहेगा तो उसे जगह इससे मैं कुछ और डोनेशन कर पाऊंगा, यात्रा जा पाऊंगा, तो आशा है। डिवोटी इतने अच्छे, ब्रह्मचारी भक्त इतने अच्छे से भक्ति करे, सुबह उठ के मंगल आरती में आते, भागवत पढ़ते, भागवत सुनते, कथा करते, प्रवचन कितना मेहनत, साइट पे देखते गौरचरण प्रभु कितना मेहनत करते, क्यों कर रहे? उनको आशा है कि हम भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जैसे वो। तो सबको आशा के ऊपर कार्य चल रहा है। तो हमको चाहिए कि जीवन में कभी भी होप को हमको लूज नहीं करना है, हमको आशा से, आशा हमारी कभी छूट ना जाए। हाँ, आध्यात्मिक आशा। बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस इज होपलेसनेस। हाँ, अगर कोई होपलेस हुआ तो सक्सेस हो जाएगा क्या? वो यशस्वी नहीं हो पाएगा। अगर हमको यशस्वी होना है तो होप रखना पड़ेगा। हाँ, और उसके होप के अनुसार प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बार हमारी जीवन में ऐसी परेशानियां आती है, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट है, व्हेन वन सीज होप इन मोस्ट होपलेस सिचुएशन ऑफ लाइफ दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू एक्सेस द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ लॉर्ड। अभी एक मुहावरा ऐसा है कि गॉड हेल्प्स देम दोज हेल्प देमसेल्स। अगर हम कुछ प्रयास करेंगे तो हमको भगवान भी मदद करेंगे। हम बोलेंगे कि देरे हरी पलंगावरी तो मिलेगा क्या? मैं बोलूंगा कि मैं सोया रहूंगा बेड के ऊपर और भगवान मुझे सब देते रहो, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर अपने जीवन में कुछ होपलेस सिचुएशन है, कुछ भी काम नहीं बन रहा है, फिर भी आप अगर भगवान के ऊपर आशा रखे रखते हो तो क्या होगा, आपके प्रयत्नों के अनुसार भगवान अपनी कृपा, मर्सी और ग्रेस प्रदान करेंगे और आपका कार्य यशस्वी होगा। तो होपलेस सिचुएशन में भी हमको होप नहीं छोड़ना है। तो फिर कैसे, किस प्रकार हम होप पाए, या कुछ उदाहरण हम शास्त्रों से देखते हैं। पहला तो है, जीवन में अगर हमको आशा चाहिए या प्रगति करना है, यशस्वी होना है, तो हमको पहले पेशेंट पेशेंट होना जरूरी है, पेशेंस जीवन में रखना जरूरी है। कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। श्रीमान गौरांग प्रभु वो भी कहते थे बीच बीच में कि देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। आजकल लोगों को क्या लगता है कि तुरंत यशस्वी हो जाऊं, आज मैं सो गया और कल सुबह उठ के करोड़पति बन जाऊं, ऐसा स्वप्न स्वप्न होता है किसी किसी को। परंतु स्वप्न की दृष्टि में प्रयास भी करना पड़ता है, और अगर हम समय देंगे, अच्छी तरह से कार्य करेंगे, तो जरूर हम यशस्वी होंगे। तो अगर हमको आशा पानी है जीवन में, भक्ति में प्रगति करनी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में या भौतिक जीवन में भी, तो हमको पहली चीज होनी चाहिए हमारे जीवन में पेशेंस, हमको संयम रखना पड़ेगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को किसी ने प्रयत्न प्रश्न पूछा कि महाराज जी, हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, परंतु जो टेंजिबल चेंज हमारे जीवन में, भक्ति में या हमारे अनर्थ निवृत्ति में जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, इतने सालों से जप कर रहे तो भी नहीं फायदा हो रहा है, आप बताइए क्यों? तो महाराज जी बताए कि आप भले 10 साल 20 साल से जप करते रहे होंगे, परंतु जो अनर्थ आपके हृदय में है या जो वासनाएं आपके हृदय में है वो कई जन्मों से जमा हुई हुई है, तो उनको निकलने में तुरंत असर शायद नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। और अनंत काल के कर्म कंपैरिजन में 10-20 साल कुछ नहीं है, है ना। अगर कोई समझो 1 लाख साल से हम गलत कार्य करते आ रहे हैं तो 10-20 साल में वो तुरंत छूट जाएगा क्या? नहीं, तो उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज क्या है? पेशेंस। हम अगर पेशेंस बनाए रखे, संयम बनाए रखे, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ अपने प्रयत्नों के अनुसार भगवान की और गुरुदेव की कृपा से जरूर हम यशस्वी हो गए। एक हमारे मेडिकल फील्ड में जब हम अंधेरे में जाते हैं, कभी भी लाइट से हम डायरेक्ट अंधेरे में जाते हैं या लाइट चला जाता है, तो एक डार्क अडॉप्टेशन बोलते हैं, रोडोप्सिन इफेक्ट उसको बोलते हैं। डार्क अडॉप्टेशन माने क्या? मानो अचानक से लाइट गया तो ऐसा नहीं कि हमको जैसे जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, रात में थोड़ा समय ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। परंतु थोड़े समय के बाद अपने आंखों में जो सेल्स है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, और हमको अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। इसको बोलते हैं डार्क अडॉप्टेशन, परंतु उसको समय देना पड़ता है, इसे तुरंत नहीं होता है। दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि फर्न एंड बाम्बू ट्री। अभी एक व्यक्ति था, उसने अपने खेत में फर्न की या जंगल में उसको सुशोभीकरण के लिए उसने फर्न के छोटे छोटे पौधे लगाए और दूसरी जगह पर उसने बाम्बू के रोप बोए। तो फर्न का तो तुरंत 1-2 दिन में जैसे पानी डाला, जैसे धूप मिला तो बढ़ने लगा, उसमें से अच्छे से बढ़ोतरी होने लगी, और कुछ दिनों में तो पूरा उसका जो जमीन था वो फर्न से अच्छे से भर गया, अच्छा दिखने लगा। परंतु बाम्बू ट्री को वो पानी डाल रहा है, देख रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, सब हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ ग्रोथ नहीं। 4 साल के बाद बाम्बू ट्री बाहर आया और बढ़ा, तो उसको कितना पेशेंस रखना पड़ा? 4 साल तक। परंतु जब भी बढ़ोतरी हुई तो अचानक से फास्ट से वो लगभग 100 फुट तक अच्छा से बढ़ा। तो ये फर्न और बाम्बू ट्री से हम देख सकते हैं कि अभी वो व्यक्ति अगर सोचता कि अरे फर्न की खेती में अच्छा है, ये जल्दी उग जाता है, बाम्बू के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ये यूजलेस है, होपलेस है, ऐसा बोल के बाम्बू को छोड़ देता, पानी ही नहीं डालता या कुछ उसके ऊपर प्रयास ही नहीं करता, तो वो सक्सेस होता था क्या? नहीं। इन ड्यू कोर्स बाम्बू से भी उसको फल मिला, उसको समय के साथ। दूसरा, अभी फर्न को और बाम्बू को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है। फर्न से कोई झाड़ घर बना सकता है क्या? नहीं, पर बाम्बू से बना सकते हैं। पर बाम्बू से सुशोभीकरण शायद नहीं हो पाएगा, परंतु तो दोनों का अलग अलग रोल है। तो हमको दो व्यक्ति को या दो सिचुएशंस को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्तों के जीवन में भी ऐसा देखा जाता है कि अरे प्रभु जी वो तो अभी अभी आया था परंतु वो अभी इतना प्रगति कर लिया, मैं तो यहीं पे हूँ, क्या करें। अरे वो अलग है, वो फर्न है, आप बाम्बू हो, आपको टाइम लगेगा पर आगे जाके आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, तो होप नहीं छोड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर गोवर्धन इको विलेज का सुशोभीकरण करना है तो हमको फन की भी ज़रूरत है, बाम्बू की भी ज़रूरत है, तो किसी के ऊपर हमको होपलेस नहीं होना है। तीसरा पास टाइम हम देखते हैं कि रामायण में शबरी का पास टाइम। अभी शबरी जब उम्र में कम थी, उस समय उसके गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप भगवान श्री राम के लिए तैयार रहो, कि आप घर साफ रखो या उनके लिए फल फूल जो भी रेडी रखो, भगवान श्री राम आएंगे। कभी आएंगे बताया नहीं। वो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई तब तक उसी उत्साह से नियमित रूप से भगवान का वेट करती थी, उनका राह देखती थी और उनकी सेवा में तत्पर रहती थी, कभी भी राम आ सकते हैं। और एक दिन प्रभु श्री राम आ गए। तो इस प्रकार देखते हैं इन तीनों उदाहरणों से कि किस प्रकार अगर हमको जीवन में यशस्वी होना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, आशा बनाए रखना है, तो हमको पेशेंस चाहिए, एक दिन में नहीं होगा। तो दूसरा एक उपाय है कि कैसे हम अपने जीवन में आशा बनाए रखें, बाय डेवलपिंग फेथ इन वर्ड्स ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर हमारा विश्वास अगर हम बनाए रखें तो अभी अपने जीवन में आशा बनी रहेगी। भगवद गीता में 9.22 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. LIC का ये statement है, योग क्षेम महाम्यम, उन्होंने भगवदगीता से लिया है. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो भक्त है उनके पास जो है उसका मैं रक्षण करता हूं, और उनके पास जो नहीं है उनको वो मैं देता हूं. कितना होप गिविंग है. जो लोग भगवान श्री कृष्ण की या भगवान की कोई भक्ति नहीं करते हैं, भले नास्तिक है, भगवान के विरुद्ध अपशब्द बोलते हैं, उनका भी भगवान भरण पोषण कर रहे हैं. अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपका तो सब भगवान जो है आपके पास उसको प्रिजर्व करेंगे, उसका रक्षण करेंगे, और जो लैकिंग है, जो कम है, वो आपको देंगे. और भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजान ही नमे भक्ता प्रणश्यति. भगवान बोलते हैं कि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उद्घोषणा करो, तुम सबको बताओ कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता. तो भगवान खुद भी बोल सकते थे, परंतु उनको लगा, अरे मैं कभी कभी बोलता हूं और कभी कभी भक्तों के लिए मुझे मेरा वचन तोड़ना पड़ता है, परंतु मेरे भक्तों का वचन मैं कभी टूटने नहीं देता. इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम बोलो कि नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का कभी विनाश नहीं होता. और हम देखते हैं कितने कितने उदाहरण है शास्त्रों में. चित्रकेतु महाराज, हाँ, माँ पार्वती ने उनको शाप दिया कि राक्षस बन जाओ. अभी एक वैष्णव को जो कि लगभग भगवान का दर्शन पा चुका था, उसको शाप मिला कि तुम राक्षस बन जाओ, परंतु वे दुखी नहीं हुए, भगवान की कृपा से वे वृत्रासुर बने और अंततः भगवत धाम चले गए. दूसरा उदाहरण आता है इंद्रदुम्न महाराज, हाँ, वे गजेंद्र बने, हाथी बने, परंतु हाथी बनने की पश्चात भी भगवान की कृपा से उनको स्मरण रहा और वे अंतकाल, अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में उन्होंने भगवान का स्मरण किया. हाँ, जबकि उनका वो क्रोकोडाइल के साथ युद्ध चालू था, उसमें उन्होंने भगवान को, भगवान की स्तुति पर गीत गाए और उनका भी उद्धार हो गया. और तीसरा उदाहरण है भरत महाराज का, जिनको तो तीन बार आना पड़ा, दो बार आना पड़ा वापस. भरत महाराज को एक बार हिरण के रूप में और दूसरी बार जड़ भरत के रूप में वापस से जन्म लेना पड़ा, परंतु भगवान की कृपा से, उनके गुरु की कृपा से, उनको दूसरे शरीर में रहते हुए भी अपने पिछले जन्म का कर्म या पिछले जन्म की जो भक्ति है उसका स्मरण रहा. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते. अगर हम भक्ति करते हुए हमारा पतन हो जाता है, हमारी भक्ति पूरी नहीं हो पाती है, तो भी अगले जन्म में हमको एक अच्छे ब्राह्मण कुल में या सुचिनाम अच्छे घर में जन्म मिलेगा, या श्रीमताम एक वेल टू डू फैमिली में हमको जन्म मिलेगा, ताकि हम हमारी बची हुई भक्ति पूरी कर पाए. तो इसी, ये तीनों उदाहरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों अपने भक्तों का रक्षण किया और उनको सेकंड चांस, दूसरा मौका दिया कि अपनी जो बची हुई भक्ति पूरी करने का. तो भगवान, हम देखते हैं कि ये जो भगवान के वचन है भगवत गीता में, भागवत में, उनसे हम आशा पा सकते हैं कि हमें हम अगर आशा बनाए रखे, पेशेंस मेंटेन रखे, भक्ति चालू रखे, गुरु के शब्दों में विश्वास रखे, तो हम इन ड्यू कोर्स भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे. तीसरा ये है इस विषय पर कि भगवान की कृपा पर भी विश्वास रखना चाहिए. पहले हमने देखा कि भगवान के वचनों पर हमें विश्वास रखना चाहिए, दूसरा देखा हमें पेशेंस चाहिए, तीसरा भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए. कोई बोलेगा मैं तो इतना पतित हूं कि मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता. वो वापस गौरांग प्रभु बोलते हैं कि हम कभी कभी खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि हमारा फॉलननेस या पतितपन ये भगवान की कृपा शक्ति से भी ज्यादा है. ऐसा हो सकता है क्या? भगवान की कृपा बड़ी है या अपना पतित होना बड़ा है? हाँ, ऐसा बोलते हैं. भगवान का एक नाम अगर हम अच्छे से लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप वो नष्ट करने की उसमें शक्ति है. तो हम कितने भी पतित रहे, अगर भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा रही तो हम निश्चित रूप से तर जाएं. तो भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु, कृपालु, भगवान बहुत ही कृपालु है, करुणा सिंधु है। एक श्लोक आता है भागवतम में, आप सबको पता ही होगा, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगांसया पाय यद्यपि साध्वी लेबे गतिम ध्यात्रिचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। इस श्लोक का अर्थ है कि बकी जो बकासुर की बहन है, वह अपने स्तन पर कालकूट नामक जहरीला विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो भगवान ने उसे गोलोक धाम में अपनी धात्री का स्थान दिया, तो उनसे दयालु और कौन हो सकता है। जो व्यक्ति मारने के लिए आया है उसको उन्होंने माता का स्थान दिया, और इनसे दयालु कौन हो सकता है। तो ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही कृपालु है, दयालु है। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं जगाय और मदाय, इनके पापों की राशि इतनी बड़ी थी कि उनका रिकॉर्ड रखते रखते चित्रगुप्त बेहोश हो जाते थे, इतने वो सभी प्रकार के पाप कर चुके थे। परंतु इन दोनों का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो भगवान की जो कृपा है ये बहुत ही महान है, हमारे पापों से, हमारे पतित होने से भी ज्यादा है। तो हमको चाहिए कि भगवान की कृपा पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। चौथा है, भगवान के भक्तों की कृपा पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के भक्त भगवान से भी दयालु है, भगवान से भी कृपालु है। हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में अनेकों अनेकों राक्षस आए, जैसे कि बकासुर है, अघासुर है, इन सब को एक दिन में, एक घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया, उनको मार दिया। भले उन्होंने तो उनके भक्तों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाई थी, परंतु कालिया इस सांप ने भगवान के पार्षद जो उनके मित्र थे और उनकी गायें थी, उनको लगभग गतप्राण कर दिया था, उनको मार दिया था उनके विष के प्रभाव से। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को जान से नहीं मारा, उसको केवल अपनी दंडित किया और बाहर जाने को कह दिया। तो क्यों? क्योंकि कालिया वॉज एसोसिएटेड विथ कृष्णास डिवोटीज, भगवान के जो भक्त है नागपत्नीज, कालिया की जो पत्नियां थी वे नागपत्नी, वे भगवान की अनन्य भक्त थी, और उनके एसोसिएशन की वजह से कालिया को ये माफी मिल गई। इतना ही नहीं, भगवान ने केवल उसका जान ही छोड़ा नहीं, बल्कि उसके सर के ऊपर अपने पदचिन्ह दिए। तो कितना बड़ा भाग्य कालिया को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी भक्त थी। तो हमको चाहिए कि भगवान के भक्तों की जो कृपा है उसके ऊपर भी हमारा विश्वास होना चाहिए, और वो कृपा पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। हम अभी भी बहुत गोवर्धन इको विलेज को मिस करते हैं कि इतने अच्छे भक्त यहाँ पे थे, परंतु कुछ कारणवश हमको एसोसिएशन छोड़कर जाना पड़ा। परंतु हमारी आशा है कि वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से पुनः कुछ सालों के बाद समय के अनुसार वापस हमें भक्तों का इसी प्रकार एसोसिएशन मिलता रहे, कृपा मिलती रहे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में, काल कृष्णदास। काल कृष्णदास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जा रहे थे, उसी समय भटाहरी नारी जो लेडीज थी उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, और भगवान ने उसके शिखा को पकड़ के उसको खींच के वो वापस लेके आए, भगवान ने कृपा दिया, बचा लिया उसको। परंतु वापस आने के बाद उन्होंने कहा अपने दूसरे भक्तों को कि आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ हिम नाउ, अभी इसको ले लो, ये काल कृष्णदास अच्छा आदमी नहीं है, तो इसको, इससे मुझे कुछ करना नहीं है, इसको आप ले लो। परंतु भगवान के दूसरे जो पार्षद थे, भक्त थे, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित, मुकुंद सरकार, ये लोगों ने काल कृष्णदास के ऊपर का होप नहीं छोड़ा। वो नहीं बोले कि अरे भगवान को इससे कुछ लेना नहीं है तो हमको भी कुछ लेना नहीं है, जाने दो। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त कभी कभी किस कारणवश उनका पतन हो जाता है, कि वो अपने आश्रम छोड़ देते हैं या कुछ गलत कार्य करते हैं, कभी कभी जप नहीं करते हैं या कुछ कुछ गलत कार्य करते हैं। भगवान ने भी अगर होप छोड़ा तो भी भगवान के जो भक्त है वे अपने ऊपर की आशा नहीं छोड़ते, वे किसी प्रकार उस व्यक्ति को भगवत भक्ति में जुड़े रहने का एक चांस या मौका देते हैं। उसी प्रकार ये जो भक्त थे उन्होंने काल कृष्णदास को बंगाल भेजा सची माता की सेवा करने के लिए, सो दैट काल कृष्णदास का जो कृपा, उसके ऊपर जो भगवान का कृपा है वो चालू रहे। तो भगवान ने उसको नहीं बोला, फिर भी भक्तों ने उसको अपना लिया। तीसरा उदाहरण है अमोक का। अमोक जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य का सन इन लॉ, जमाई था, वो तो भगवान का द्वेषी था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही वो दोष निकालता था, ये सन्यासी है, ये ऐसा खाते है, वो ऐसा करते है, वो करते, भगवान के ऊपर दोष निकालता था। और उसको उसके पाप कर्मों की वजह से एक बार कॉलरा हो गया और इतनी बुरी तरह वो बीमार हो गया कि वो अभी मरणासन्न अवस्था में था, लगभग प्राण ही छोड़ने वाला था। उसी समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से इस अमोक को जीवन दान दिया, उसको अच्छा किया। तभी सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको पूछते हैं, लॉर्ड व्हाई हैव यू सेव्ड अ ऑफेंडर लाइक अमोक, आपने इस अपराधी अमोक का क्यों उसको बचाया, क्यों उसका उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को उत्तर देते हैं कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आपके घर के नौकर सर्वेंट उतना ही नहीं, आपके घर का कुत्ता भी मेरे लिए बहुत प्रिय है। हाँ, आपके घर का कुत्ता भी मेरे लिए प्रिय है। तो हमें अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें केवल भगवान के भक्तों का प्रिय बनना चाहिए, भगवान के भक्तों को कुछ तो सेवा करनी चाहिए, ताकि अगर कुछ कारणवश अगर हम भक्तों के प्रिय हो गए तो भगवान अपने आप हमारा उद्धार कर देंगे। तो इन तीन उदाहरणों से हम देखते हैं कि अगर हम भगवान के भक्तों का जो कृपा है इसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन में आशा मिल सकती है। और आखिरी है कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से हम प्रेरणा देखते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के लगभग आखिरी कुछ सालों में कृष्ण भावना की स्थापना की और प्रचार किया। और कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु के वचनों के ऊपर और चैतन्य महाप्रभु भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास रखा और वे अपने जीवन में यशस्वी हो गए। देखो, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, 70 साल की उम्र है, उसको आप अगर ठंड में अमेरिका जाने को कहोगे तो शायद वो लौट भी ना आ पाए। हाँ, श्रील प्रभुपाद की भी तबीयत कुछ इसी प्रकार थी। जाते समय उनको 2-3 बार अटैक, हार्ट अटैक आ चुका बोट के ऊपर, मालवाहु जहाज जलदूत में वे गए, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, वहां पे जाने के बाद उनके लिए कोई हार लेके खड़ा नहीं था कि आओ आपका हम स्वागत करते हैं अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं। उतरने के बाद लेफ्ट जाए या राइट जाए ये भी उनको पता नहीं था, इनकी कठिन परिस्थिति थी। तो हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत ही होपलेस सिचुएशन है, निराशाजनक सिचुएशन है, परंतु श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो तो जरूर वे मुझे शक्ति देंगे। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी च आछे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइ भी मोर नाम, तो ये जो भविष्यवाणी है ये जरूर सही होगी। तो इस विश्वास को लेते हुए श्रील प्रभुपाद अपने उम्र के 67 या 70वें साल में अमेरिका गए और कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का स्थापना किया। इतना ही नहीं कि 108 मंदिर दुनिया में अलग अलग जगह पर बनाए, 10-11 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, अनेक अनेक देशों में जाके 10,000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए। ये सब जो यश या आध्यात्मिक यश उनको मिला है उसका श्रेय उनका जो विश्वास था गुरु के वाक्य पे ऊपर और भगवान की जो वाणी है उसके ऊपर था, इसकी वजह से उनको ये सब यश मिला। हम एक साक्षी गोपाल की कथा चैतन्य चरितामृत में आती है वो संक्षिप्त में सुनेंगे, 5 मिनट है हमारे पास। तो दो ब्राह्मण थे, उसमें से बूढ़ा ब्राह्मण था और एक यंग तरुण ब्राह्मण था। दोनों एक बार तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा में जाते हुए ये जो तरुण ब्राह्मण था या छोटा ब्राह्मण था उसने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत अच्छी तरह से सेवा की और यात्रा करते करते वे वृंदावन पहुंचे। और वहां पर जाने के बाद इसकी सेवा से प्रसन्न होकर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। तो ये तरुण ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब घर का हूं, मेरे पास तो कुछ धन या संपत्ति या ऐश्वर्य नाम कुछ भी नहीं है, आप आपकी पुत्री मुझे क्यों दोगे, मत दो। और तो वो बोला, नहीं 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 मेरी ये बहुत इच्छा है कि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, एक अच्छे भक्त हो, तो मेरी इच्छा है कि आपको मेरी पुत्री विवाह में दूं। तो वो तरुण ब्राह्मण बोलता है कि आपकी भले इच्छा हो, कल जाके आप घर जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपका विरोध करेंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो आपको, आप जो वचन दे रहे हैं वो उसका कोई तो साक्षी होना चाहिए, आप भगवान के सामने मुझे वचन दो ताकि मैं ये मानूं। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण भगवान के सामने जाके, कृष्ण भगवान के सामने वचन देता है कि मेरी पुत्री का विवाह मैं इस तरुण ब्राह्मण से करता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद यात्रा करने के पश्चात दोनों ब्राह्मण जब गांव वापस लौट के आते हैं, तब वो जो तरुण ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को याद दिलाता है कि आपने वचन दिया था कि आपकी पुत्री का मुझसे विवाह करोगे, तो उसका क्या हुआ। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है ठीक है कर देते हैं। तो वो अपने परिवार में इस विषय पे चर्चा करता है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह इस तरुण ब्राह्मण से कर दूं। उसी समय उसके जो घर वाले रहते हैं या परिवारजन रहते हैं वे इसका कड़ाड़ा विरोध करते हैं। वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही गरीब आदमी है। तो इस विषय में एक श्लोक आता है, यही वाक्य अच्छे मोर साक्षी महाजन, यार वाक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन। ब्राह्मण बोलते हैं मेरे पास जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर ये सारे भाग्य नहीं है, लेकिन मेरी एक अमूल्य अमानत है और वह है भगवान के वचन पर श्रद्धा होना। यह वाक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन। तो इस ब्राह्मण में बाकी कुछ नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, नाम नहीं था, कुछ नहीं था, परंतु उसके में एक सद्गुण था। क्या था कि यही यार वाक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन, कि भगवान श्री कृष्ण का जो वचन है या भक्तों का जो वचन है उसमें उसको दृढ़ श्रद्धा थी। तो हमको चाहिए जीवन में, अगर हम हमें भगवान के भक्तों के वचनों के ऊपर और भगवान के वचनों के ऊपर पूरी श्रद्धा रही तो हमारा भी काम यशस्वी होगा, हमारे जीवन में आशा बनी रहेगी। तो जब भी इन दोनों के जीवन में यह संकट आया कि वो बूढ़े ब्राह्मण की तो इच्छा थी कि अपने पुत्री का विवाह करा दे, परंतु घर वाले परिवारजन उसको विरोध करने लगे, तो परिवारजन उस तरुण ब्राह्मण को बोले कि आपको हमारे पिताजी ने वचन दिया था, इसका साक्षी कौन है, इसका विटनेस कौन है। तो वो बोले भगवान के सामने उन्होंने वचन दिया था, भगवान साक्षी है। तो बोले साक्षी को लेके आओ, आपका जो विटनेस है उसको लेके आओ, अगर वो कहेंगे तो हम हमारी बहन या बेटी जो भी है उसको आपसे विवाह करा देंगे। तो कार्य तो कठिन था, परंतु इस ब्राह्मण को, तरुण ब्राह्मण को भगवान के वचनों पे, भक्तों के वचनों पर विश्वास था। वृंदावन चला गया, भगवान से उसने वार्तालाप किया, भगवान भी उससे बोले, भगवान से उन्होंने विनती की कि हे भगवान, आपके भक्तों का वचन व्यर्थ होने जा रहा है, कृपया आप आइए और साक्ष दीजिए, आप विटनेस रहिए और बताइए कि इस बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था। तो भगवान उसको कहने लगे कि अरे मैं मूर्ति रूप में हूं, मैं विग्रह रूप में हूं, मैं कैसे आ सकता हूं। तो साक्षी वो तरुण ब्राह्मण बोला, जैसे आप अभी बोल पा रहे हो तो आप चल भी पाओगे, चलो हमारे साथ चलो और साक्षी दो। तो भगवान बोले अरे ऐसा नहीं होता है। तब उसमें एक वाक्य आता है कि प्रतिमा नाहि तुम्हीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप मूर्ति नहीं हो, ये भगवान श्री वृंदावन बिहारी जी यहाँ पे खड़े हैं, वे केवल मूर्ति नहीं है, वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो ये इस ब्राह्मण को साक्ष्य देने के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान बोले तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, केवल एक नियम है कि आप पीछे मुड़ के मत देखो, केवल मेरे नुपुर का आवाज आएगा, पैर में भगवान पैंजन नुपुर पहनते हैं, उसका आवाज आते रहेगा, तुम समझ लेना मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। रोज मुझे एक शेर माने 1 किलो राइस पका के खिलाने का, भोग लगाने का, मैं चलता रहूंगा। तो इस प्रकार भगवान उसके पीछे पीछे आए, गांव तक आए, गांव के जस्ट बाउंड्री के बाहर वहां पे रुके, इन्होंने भी पीछे देख लिया, वहां पे भगवान रुके। फिर गांव सब गांव वालों को उन्होंने बुलाया, भगवान ने साक्ष्य दी, भगवान ने विटनेस दी, और इस प्रकार इस तरुण ब्राह्मण का विवाह हुआ। हाँ, तो इस प्रकार इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर हमारा भगवान के भक्तों के वचनों के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास रहा तो हमारे जीवन में आशा बनी रहेगी। तो हमें चाहिए, शॉर्ट में हम रिकैप करते हैं कि आज के श्लोक में हम देखें कि प्रियव्रत महाराज किस प्रकार वापस से कृष्ण भक्ति की ओर दृढ़ता के साथ जाने का निश्चय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के जीवन में कुछ हानि भी हो जाती है, उसका पतन भी हो जाता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। आगे से जब भी उसको याद आएगी तो उसका भक्ति वापस से चालू हो जाएगा जितना उसने किया था उसके आगे। और उसके विपरीत कोई भौतिकवादी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा काम किया तो भी उसको नेक्स्ट लाइफ में जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमको चाहिए कि भक्ति में जो भी हम प्रयास करते हैं उसका कभी ह्रास नहीं होता। तो हमने देखा कि आशा की सबको आवश्यकता है, निराश नहीं होना चाहिए, होप रहनी चाहिए। कृष्ण भावना इस्कॉन, कृष्ण भावना इस्कॉन जो संस्था है, इसका अमूल्य योगदान इस दुनिया को क्या है, तो वी आर प्रोवाइडिंग रे ऑफ होप, हम सबको आशा प्रदान कर रहे हैं, वही मंदिरों का भक्तों का उद्देश्य है। देखते हैं कि हम आशा कहाँ कहाँ से पा सकते हैं। एक तो भगवान के वचनों से हम आशा पाते हैं। भगवद गीता में अनेकों अनेकों जगह पर भगवान ने हमको आश्वासित किया है कि आप भक्ति करो, आपका ह्रास नहीं होगा, आपका अच्छा लाभ होगा। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार भगवान के भक्तों के वचनों पर हमको विश्वास रखना चाहिए। भगवान के भक्त भी हमें भगवान ने भी कभी त्यागा तो भी भक्त हमें आश्रय देते हैं। तीसरा देखा कि भगवान की कृपा शक्ति पर हमें विश्वास रखना चाहिए। जगाई मदाई की स्टोरी में हमने देखा और अनेकों अनेकों उदाहरणों में कि भगवान की कृपा अगर हम पे बनी रही तो हम भले ही पतित भी रहे तो हमारा उद्धार हो सकता है। हाँ, हमको पतित बने नहीं रहना है, परंतु पतित रहे तो भी भगवान कृपा कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को अपने मन में रखते हुए बहुत सालों तक उसका तैयारी किया और अपने जीवन के अंतकाल में, लास्ट के कुछ सालों में, 10-12 सालों में अच्छी तरह से कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ टिप्पणी या प्रश्न देना है? आदि केशव प्रभु, हरे कृष्णा।